नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मनुअल गोंसाल्वेस लॉरेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। अफगानिस्तान के कंधार में पाकिस्तान सेना के आवासीय हमले में 6 लोग मारे गए और 5 अन्य घायल। यूक्रेन ने रूस पर ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने और 7 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। और विश्व चैंपियन डी गुकेश फिडे शतरंज विश्व कप से बाहर, ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और अर्जुन एरिगेसी चौथे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 2 देशों की राजकीय यात्रा के पहले चरण में अंगोला पहुंच गई हैं। ये किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की अंगोला की पहली राजकीय यात्रा है। ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय बैठक है। इससे पहले मई में अंगोला के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली का दौरा किया था। आज राष्ट्रपति मुर्मू लुआंडा स्थित राष्ट्रपति भवन में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मनुअल गोंसाल्वेस लॉरेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इसके बाद दोनों देश आपसी हित के मुद्दों से जुड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में इस वर्ष मई में नई दिल्ली में हुई वार्ता को आगे बढ़ाने की संभावना है।
साल की शुरुआत में जब अंगोला के राष्ट्रपति की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, तब भारत ने अंगोला की रक्षा आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी ऋण सहायता को मंजूरी दी थी। दोनों देश अभी इस समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा कर रहे हैं। इसके तहत अंगोला भारत से कुछ रक्षा उपकरण भी खरीद सकता है। अंगोला पहले से ही अफ्रीका से भारत को ऊर्जा देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहां नए तेल क्षेत्र की खोज से भारत को रिफाइनरी और तेल की खोज में अंगोला की मदद करने के अवसर मिल सकते हैं। भारत अंगोला को कृषि तकनीक और उपकरणों के जरिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने में भी मदद कर सकता है। इस दौरान दोनों देशों के बीच जिन अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हो सकती है, उनमें स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषय शामिल है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, अंगोला।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के दूसरे चरण में 11 से 13 नवम्बर तक बोत्सवाना जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की पुनाच्छांगसु द्वितीय जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे। भारत और भूटान ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी वैश्विक शांति प्रार्थना समारोह में हिस्सा लेंगे और थिम्पू के ताशी छोजोंग में पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना करेंगे। इस बीच भारत से ले जाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का एक अंश भूटान की राजधानी थिम्पू के प्रमुख मठ तासित छोंगोंग में स्थापित किया गया है। ये मठ भूटान की सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का केंद्र है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि ये अवशेष 8 से 18 नवंबर तक थिम्पू में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखे जाएंगे। ये भारत और भूटान के बीच गहरी आध्यात्मिक संपर्क का प्रतीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते सीईसीए को शीघ्र ही पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फेरेल और कौशल तथा प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू जाइल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये बात कही। इस दौरान सीईसीए वार्ता के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की गई और द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता पूरी हो गई है। एक रिपोर्ट।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि वार्ता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, आर्थिक सहयोग तथा उत्पत्ति के नियमों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों ने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही। यह एक मजबूत, आधुनिक और संतुलित व्यापार साझेदारी के साझा लक्ष्य को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले ने वार्ता में अब तक हुई प्रगति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, आपूर्ति आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और दोनों देशों के व्यवसायों के लिए बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने में सहायता करेगा। प्रस्तावित मुक्त व्यापार से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, औषधि, शिक्षा और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए अवसर मिलने की संभावना है। दोनों देश और अधिक बैठकों तथा तकनीकी कार्यों के माध्यम से इस गति को बनाए रखने पर भी सहमत हुए। दोनों पक्षों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करने और हज 2026 की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जेद्दा पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि वे हज प्रबंधन पर सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाली चर्चाओं के लिए उत्सुक हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्टक जिले में पाकिस्तान सेना ने 3 रिहायशी इलाकों पर किए गए हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 6 लोग मारे गए और 5 अन्य घायल हो गए। ये हमला इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता के दौरान हुआ। हालांकि ये वार्ता कथित तौर पर गतिरोध में समाप्त हुई। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और नागरिकों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि अफगान बलों की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री आजम नजीर तरार ने संसद को बताया कि देश में मानवाधिकार और महिलाओं की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। 2021 से 2024 तक 4 वर्षों में देश में 7,500 से ज्यादा महिलाओं की हत्या हुई, जिनमें 1,553 महिलाओं की हत्या केवल ऑनर किलिंग के नाम पर हुई है। रूस ने यूक्रेन पर रात भर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई। 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के उपकेंद्रों को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि ये हमले सुनियोजित थे। उन्होंने कहा कि रूस जानबूझकर यूरोप में परमाणु सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। रूस ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु परीक्षणों की संभावित बहाली पर दिए गए बयान पर गहरी चिंता जताई है। रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने ट्रंप के बयान को अनिश्चित परिणामों वाली गंभीर टिप्पणी बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस स्थिति का आकलन करने के लिए रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है और कहा कि इस तरह के घटनाक्रमों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विश्व चैंपियन डी गुकेश फिडे शतरंज में विश्व कप से बाहर हो गए हैं। वहीं ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और अर्जुन एरिगेसी चौथे दौर में पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट।
ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने गेम में मिली मामूली बढ़त का पूरा फायदा उठाते हुए आर्मेनिया के ग्रैंड मास्टर रॉबर्ट हाउहेनिसियन को हरा दिया। इस तरह 4 भारतीयों ने शनिवार को यहां जारी फिडे विश्व कप 2025 के चौथे राउंड में जगह पक्की कर ली, जबकि विश्व चैंपियन गुकेश डी हारकर बाहर हो गए। प्रज्ञानंदा, जिन्हें तीसरे राउंड में पहुंचने के लिए लंबा टाई ब्रेक खेलना पड़ा और फिर काले मोहरों से पहला गेम ड्रॉ करना पड़ा, तब मुश्किल में आ गए जब हाउहेनिसियन ने उनकी शुरुआती बढ़त को खत्म कर दिया। लेकिन तीसरे सर्वोच्च रैंक इस भारतीय खिलाड़ी ने 27वीं चाल में अपनी रानी और हाथी के साथ काले मोहरों के राजा पर दबाव बनाकर मैच पर नियंत्रण कर लिया। अर्मेनियाई खिलाड़ी ने अंततः 42 चालों के बाद हार मान ली। सफेद मोहरों से पहला गेम जीतने वाले हरिकृष्णा बेल्जियम के ग्रैंड मास्टर डेनियल दर्दा के खिलाफ एक त्वरित ड्रॉ खेलने के बाद अगले दौर में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ मनुअल गोंसाल्विस लॉरेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। अफगानिस्तान के कंधार में पाकिस्तान सेना के आवासीय हमले में 6 लोग मारे गए और 5 अन्य घायल। यूक्रेन ने रूस पर ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने और 7 लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। और विश्व चैंपियन डी गुकेश फिडे शतरंज विश्व कप से बाहर। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और अर्जुन एरिगेसी चौथे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।